इसराइल ने जो साजिशें की और इसराइल के सरपरस्तों ने जो मंसूबे तैयार किए, उसमें उन्होंने हुकूमतों को तो मिला लिया, हुकूमतों पर उन्होंने काफ़ी काम कर लिया और बहुत दिनों तक अपने हाथ में रखा। सऊदी अरब के सिलसिले में तब तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, इसराइल ने जो ताज़ा डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट अभी हुआ है, क्राउन प्रिंस बन गए मोहम्मद बिन सलमान, इसका खैर मकदम किया है इसराइल में, इस पर बड़ा मुस्बत रद्द अमल आया। तो हुकूमतों की सतह पर वो काफ़ी कामयाब रहे, लेकिन जैसे कि आपने वो इशारा भी किया कि 1988 से जो अवामी सतह पर एक रद्द अमल सामने आया, ये रद्द अमल हमको तो हम ये देखते हैं कि वसीतर हो रहा है, बढ़ रहा है। शाम के मसले का, शाम के मसले यानी खुद शाम को इस ब्लॉक से, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, रेजिस्टेंस ब्लॉक जो कहा आपने, उससे निकाल लेने की कोशिश थी कि एक बीच की कड़ी निकल जाए तो लेबनान हिजबुल्ला अलग पड़ जाए और ईरान एक अलग पड़ जाए, लेकिन ये नाकाम रही कोशिश। ऐसी सूरत में नाकाम रही कि बहुत बड़े पैमाने पे मुल्कों ने इसमें साथ दिया था कि ये हो जाए, यानी ये ब्लॉक, ये कड़ी उससे निकल जाए। क्या यहाँ पर ये हम तसव्वुर का ये तासुर ले सकते हैं, इससे ये सोच सकते हैं कि जिस तरह से बज़ाहिर मुहाल नज़र आने वाले मार्के को इस रेजिस्टेंस ब्लॉक ने सर कर लिया, ऐसे ही अगला मरहला फिलिस्तीन का होगा?
देखिए, रास्ते जो है ना, सूर्य को या शाम को जो एक सजा दी गई है बुनियादी तौर पर,
जी
जैसे आपने इशारा किया ना, वो कड़ी असल में इन पूरे अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर फलस्तीन के इशू को होती थी तो वो शाम की तरफ
शाम
से
से
होती
जी
थी। हत्ता तमाम जिहादी तंजीमों के दफातर जो हैं वो
जी
हमास हो या दूसरी जमातें, सबके शाम के अंदर, दमिश्क के अंदर था, और
जी
कुछ चोरी छुपे भी नहीं थे, ओपनली शाम, हाफिज अल असद के जमाने में भी और
बिल्कुल
बशार अल असद के जमाने भी इन्होंने भरपूर साथ दिया फलस्तीनियों का। गोलान का मसला, जोलान की जिसको हाइट्स कहते हैं, वो अपनी जगह पे रहा, लेकिन इसके बावजूद भी शाम पूरी तरह जो है वो फलस्तीन की हिमायत में खड़ा रहा। देखें, कोई रियासत या कोई हुकूमत उस वक्त शिकस्त और रीख का जो शिकार होती है कि जब उसके अंदर से जो है वो खोखलापन शुरू हो जाता है। देखिए, एक तो ये है कि गासिब सुन्नी हुकूमत एक गासिब हुकूमत है, यानी उसको वहां से, उस सरजमीन से हिमायत नहीं है। एक बुनियादी चीज होती है कि अगर आप उस सरजमीन के हैं तो सरजमीन की आवाम आपका साथ देती है। आप जब ऊपर जाके एक हमलावर, एक इम्पोज और मुसल्लत होकर जब बैठते हैं तो नीचे से आपको अवामी हिमायत
नहीं
नहीं
मिलती
मिल
है
सकती।
जी।
अब क्या है कि इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया से यहूदियों को बुलाने का जो है प्लान किया, और एक बड़ा मारूफ इस्तलाह निकाली जिसको उन्होंने अपने फिक्री और नजरियाती उसमें लेके आए कि यहां पे हम एक बहिश्ते मऊद बनाएंगे, यानी इसराइल को बहिश्ते मऊद बनाने का जो
जी
है एक नारा दिया गया था, और इस नाम पे दुनिया भर में बसने वाले यहूदियों को वो लाके फलस्तीन के अंदर लाना चाह रहे थे कि ताकि यहां की आबादी की रेशो इस अंदाज से हो जाए कि अक्सरियत में आ जाए, यानी यहूदी
जी
अक्सरियत में आ जाए,
जी
क्योंकि इस वक्त फलस्तीन के अंदर मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, और यहूदियों के अंदर ये जो ग्रुप है, मैं जब यहूदी की इस्तेमाल करता हूं तो बाज़ दफ़ा रवानी में इंसान जो है वो ज़ायनिस्ट के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर
हाँ
देता है,
जी जबकि
लेकिन
अलग है
ज़ायनिस्ट बिल्कुल एक एक इंतहा पसंद और तशद्दुद पसंद किस्म का एक ग्रोह है, मखसूस नजरियात के साथ, कि जो इस वक्त इसराइली गवर्नमेंट में, यानी जिसे कहते हैं कि वो ओहदे पे है,
यहूदी दाइश कह सकते
या
हैं उन्हें।
यहूदी दाइश कह लें आप, तो ये वो इन्होंने क्या किया कि इधर उधर से लोगों को आबाद करने के लिए, यानी लाने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि पहले मरले में भी ये एक मुश्किल का शिकार हो गए। अब जो यूरोप से आते थे यहूदी, उनको खास प्रोटोकॉल मिलता था, जो रशिया से आते थे उनको और तरह का प्रोटोकॉल, जो अरब ममालिक से जो आते हैं उनको कुछ और, यानी खुद इस वक्त इसराइली मुआशरा वो बहिश्ते मऊद के तसव्वुर वाला, उसके अंदर 4 से 5 तबकात हैं, यानी इन यहूदियों के अंदर भी नस्ल परस्ती की बुनियाद पे,
बहिश्ते
रंग की
मऊद में
बुनियाद पे, इस बहिश्ते महूद में, नाम नयाद बहिश्ते महूद के अंदर जो यूरोप से आए हैं वो फर्स्ट क्लास हैं, जो रशिया से हैं वो थर्ड क्लास हैं, और जो मशरकी इलाकों से और इलाकों से गए हैं, हत्ता उनको उन नामों से याद किया जाता है, ये बहरेनी यहूदी है, ये
जी
यमनी
जी
यहूदी है।